के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। इस जगत का सार, सबका व्यू अपना अपना हो सकता है, सबके विचार भी अपने अपने हो सकते हैं। वास्तव में हमारा जीवन ही एक, हर एक का अपना अपना एक संसार होता है जीवन में, और उसका सार भी हम अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। अगर संसार के शब्दों में देखा जाए तो कहा जाता है प्रेम ही जगत का सार है। और बाबा भी हम सबको आकर सबसे पहले प्रेम से सींचते हैं। प्रेम के बीज हमारी मन बुद्धि रूपी धरनी पर बोते हैं, और खुद धीरे धीरे फिर कैसे ज्ञान के जल द्वारा अंकुरित होते हैं, क्योंकि सारे संसार में इस समय प्रेम का सूखा पड़ा हुआ है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ऐसा बल है, जिसके बल पर कहा जाता है हिंसक प्राणियों को भी वश में किया जा सकता है। छत्रछाया है, जिस छत्रछाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक चुंबक की तरह है जो दूसरों को आकर्षित करता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन है, इसमें हमने अपने जीवन में वास्तविक प्रेम को कहाँ तक अप्लाई किया है। बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन एक चलती फिरती लाइब्रेरी की तरह है। तो सार क्या है वास्तव में हमारे जीवन का? अगर बाबा के शब्दों में कहें तो सारा घुमा फिरा के बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव मध्य अजीब। सारे ज्ञान का सार भी क्या है? बाबा कहते हैं एक मुझ बाप को याद करो। सारे ज्ञान का सार दो शब्दों में आना और जाना, बिंदी उस रूप में स्थित होना। तो इस स्वरूप में स्थित होने के लिए, इस सार का अनुभव करने के लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा। संसार में, संसार के लिए क्या कहा जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और जगदीश भाई के शब्दों में कहें तो ये संसार कैसा है, झूठन के भी झूठन, झूठन के भी झूठन, झूठन के भी झूठन, ऐसा कहा जाता है। ये संसार का वर्तमान संसार का सार है, लेकिन हम सभी इस जगत के वो सार हैं जिस सार के आधार पर पूरा कल्प ये जगत चलता है, नए युग का निर्माण करते हैं। तो सतयुग से लेकर अंत तक, कलयुग के अंत तक, हम सब आत्माओं की उपस्थिति इस संसार के लिए रोशनी का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है। बाबा कहते तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें या अटेंशन रखें, जो हम अपने इस जीवन का वास्तविक रस अनुभव कर लें, ना केवल हम बल्कि दूसरों को भी उसकी महसूसता करा सकें कि वास्तव में इस ब्राह्मण जीवन का सार क्या है, क्यों हम इतनी लंबी यात्रा पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं विस्तार में जाते जाते सार छिप जाता है, और जब सार छिप जाता है तो विस्तार में खोने से हम अपनी वास्तविकता से दूर चले जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। तो इसमें हम 18 बातों में देखेंगे कि हमारे जीवन का सार क्या है। अलग अलग तरीके से, कुछ एक बाबा की मुरलियों से हैं, कुछ एक चिंतन है। तो सबसे पहली बात है, हमारी जीवन का सार है बाप ही एक संसार है, क्योंकि सारा दिन हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, संसार में जाती है। कर्म क्षेत्र पर अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे वो लौकिक में, अलौकिक में, सेवा क्षेत्र में। तो हमारी बुद्धि अनेक बातों में बार बार विभाजित होती रहती है, संबंधों में खंडित होती रहती है, बिखर जाती है। कहीं वो विस्तार में जाते जाते सार छिप जाता है कि हम एक बाप के बच्चे हैं या एक बाप ही मेरा संसार है, सार छिप जाता है और विस्तार में खो जाते हैं। अगर उसमें भी हमको स्मृति रहे कि एक बाप ही मेरा संसार है, और उस संसार की जो अलौकिकता है, जो रूहानियत है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, अगर उससे हमारा लिंक किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहे तो हम एनर्जिक टिक रहेंगे, और दूसरा जो बाहरी जगत है वो हमको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो बाप ही संसार है, इस संसार का प्रभाव दूसरे संसार पर पड़ेगा, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उस संसार पर पड़ेगा। तो पहली बात हम क्या स्मृति में रखेंगे, एक बाप ही हमारा संसार है। दूसरी बात हमको स्मृति में रखनी है कि ब्रह्मा बाप की तरह हमारा जीवन भी एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप का जीवन कैसा था, एक खुली किताब की तरह है। और ये इस संस्था के बारे में ये सर्टिफिकेट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो माउंट आबू में आए थे, उस समय उन्होंने जिक्र किया था कि संस्था एक खुली किताब की तरह है। हालांकि उनको यहाँ आने से बहुत नेताओं ने रोका था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये संस्था है ऐसी है वैसी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं तो सुनी सुनाई पर बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने सारा देखा, जांचा, परखा था और सर्टिफिकेट दिया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक खुली किताब की तरह है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। और यही दूसरी कोटेशन, यही सर्टिफिकेट बाबा रामदेव ने भी दिया था यहाँ कर, जो यहाँ आए थे और यहाँ एक उनसे संदर्भित एक यहाँ आश्रम है, वहाँ गए थे तो उन आश्रम वालों ने उनको रोका था कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों गए। तो बाबा रामदेव ने उनको कहा था कि आपकी इस संकुचित मानसिकता के कारण ही आपका आश्रम पीछे रह गया है, और ब्रह्मा कुमारी की व्यापक मानसिकता है, इस कारण वो बहुत विश्वव्यापी हो गया है। तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा बाप के जीवन की तरह, एक खुली किताब की तरह, अर्थात एक स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरे अगर हमारे जीवन में झांके तो उनको भी कोई मन में इस तरह के असंतुष्टता या असमंजस की भावना या कोई ऐसे पशुपेश की भावना मन में ऐसा ना रहे कि बाहर से तो कुछ दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और है। जैसी हमारी अंदर की मानसिकता है, वही हमारे व्यवहारिकता में, वही हमारे आचरण में दूसरों को भी दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो दूसरी बात हमको स्मृति में रखनी है ये ब्रह्मा बाप की जरा उनकी तरह हमारे जीवन में त्याग, तपस्या, रमणीकता, गंभीरता, मिलनसारिता, वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात है, अगर हमको सार का अनुभव करना है तो कभी भी हम शिकायत ना करें, हमेशा शुक्रिया करें, थैंक्स, नहीं तो कंप्लेंट से मन भरा रहता है, चाहे वो दूसरों के जीवन से या अपनी ही कंप्लेंट का हम रोना रोते रहते हैं। इसलिए शिकायत करने के बजाय शुक्रिया होना चाहिए। और वो तब मना सकते हैं जब हम प्राप्तियों को सामने रखें, या अगर कंपैरिजन भी करने की आदत है तो कंपैरिजन उन आत्माओं से करें जो संसार में वो आत्माएं लाचार हैं, दुखी हैं, कमज़ोर हैं, उनकी भेंट में हम आत्माएं कहाँ हैं, किस मोड़ पर हैं, किसकी गोद में बैठे हैं, किसके सामने पल रहे हैं, किसकी स्मृति हमारी बुद्धि में, किसने हमारी बुद्धि में इतने बड़े बड़े पावरफुल संकल्पों का खजाना दिया है। तो अगर तुलना करें तो भी शिकायतों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शिकायत की बजाय शुक्रिया मनाना चाहिए। ओहो हमारा परम सौभाग्य, ओहो भगवान को हम शुक्रिया करें, थैंक्स करें कि हम सब बच्चों को क्या से क्या बना दिया। जो पुरुषार्थ में आ गए हैं उनसे तुलना करें कि उनके जैसा हम कैसे कैसा बन सकते हैं, उनसे आगे कैसे जाएं, या उनको हम हमेशा आगे कैसे रखें दूसरों को, उस दुख में सुख समाया हुआ है। तो तीसरी बात है, हमको शिकायत नहीं करनी है, अपनी मस्ती में मस्त रहना है। चौथी बात है, डू गुड हैव गुड, कर वाला हो वाला, ये हमारे जीवन का सार है। अच्छा करेंगे उसका परिणाम भी हमको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जैसे बाबा के शब्दों में कहें, दुख देंगे तो डैश डैश डैश, और सुख देंगे तो मरेंगे नहीं जिएंगे। तो हमको हमेशा अपने, ना केवल अपने हित की बल्कि सबके हित की बात सोचनी है। और ये लंबे समय की साधना है, एक दो दिन की बात नहीं है। जब तक हम अपने अंदर वो शक्ति नहीं भरते हैं, वैसी भावनाओं का संचार नहीं करते हैं, तब तक हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं ना दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस संसार की में भी ये शिक्षाएँ पढ़ाई जाती हैं कि डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। नेक्स्ट है, जीवन में ईमानदारी चाहिए, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। हम अपने आप से कितने ईमानदार हैं, अपने पुरुषार्थ से कितना ईमानदार हैं, यज्ञ से कितना ईमानदार हैं, परिवार से कितना ईमानदार हैं, सेवाओं के क्षेत्र में कितना ईमानदार हैं, लौकिकता में कितना ईमानदार हैं। तो ईमानदारी भी हमको क्या बनाती है, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, दूसरों के मन में हमारे प्रति एक ऊंची भावनाएं बनी रहती हैं, और हम ईमानदारी दूसरों को भी परिवर्तन करने में मदद करती है। अगर हम ईमानदार हैं तो दूसरे भी उस कदम पर चलने का साहस रखते हैं। तो ईमानदारी भी हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, इस जीवन का सार क्या है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, फ्री फ्रॉम ऑल बंडेजेस, तन के बंधन, मन के बंधन, इन बंधनों से ऊपर उठना है। और उन बंधनों से ऊपर उठने के लिए ज्ञान की तलवार हमको हमेशा धारदार बना के रखनी है। बंधन तभी काट सकते हैं अगर काटने वाला शस्त्र हमारे पास में है तो। अगर शस्त्र हमारे पास में नहीं है तो जितना हम मर्जी पुरुषार्थ करें, उस पुरुषार्थ में जो परिणाम हमको मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान की तलवार को हमेशा धारदार बना के रखना है। तो क्या होगा, हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, खुले गगन में स्वच्छंद विचरण करने का आनंद ले सकेंगे। तो सब बंधनों से मुक्त होने के लिए हमको ज्ञान को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, पियो ज्ञान अमृत, पियो और दूसरों को भी पीने दो। अर्थात दूसरों के भी समय को हम ऐसे ना बांध के रख दें कि हम तो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे दिखाई भी देता है, कुछ एक भाई बहने होते हैं जो सवेरे अमृत वेला कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 से 4 या 2 से 4:15 तक, या फिर शाम का टाइम भी हमने देखा वो शाम के टाइम योग से पहले पहले योग कर लेंगे और फिर जो योग करने वाले होते हैं उनके पास में बैठ जाएंगे तो दूसरों को योग करने से रोक देते हैं, और जिस टाइम में योग करने चाहिए उस टाइम वो दूसरी बातों में लग जाते हैं। तो हम अपने ज्ञान को भी और अपने योग के टाइम को भी सफल बनाएं, अर्थात दूसरे के पुरुषार्थ में व्यवधान उत्पन्न ना करें। हाँ, खुद अपनी पढ़ाई में पहले पढ़ लिए, काम धंधा पूरा कर लिया, अपना होमवर्क कर लिया और फिर दूसरों को जिनको पढ़ना है उनको घुमाने के लिए ले चले गए, तो ये भुक्तभोगी हैं। तो जियो और जीने दो, इस परिपाटी को हमको गहराई से समझना है। दूसरों को दबा कर रखना, ये सब सूक्ष्म पाप की श्रेणी में आते हैं जो हमें बोझिल बना देते हैं। तो कितनी बात होगी, 5वीं, 7वीं होगी। अच्छा ठीक है, जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, हियर नो एवल, सी नो एवल, डू नो एवल, टाक नो एवल, रीड नो एवल, ईट नो एवल। 5 नहीं तो ज़्यादा हो गया ना। हाँ जी, ईट नो एवल, थिंक नो एवल, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा पढ़ो, ना बुरा करो। क्योंकि हम रोज मुरलियों में सुनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कर्मेंद्रियाँ जो धोखा देती रहती हैं, तो कितना इन पर अटेंशन रखने की जरूरत है। अगर इन सारी बातों का हम रिवाइज भी करें सारे दिन में तो बहुत हद तक हम मुक्त हो सकते हैं, बार बार अगर रिवाइज करें तो। तो हियर नो एवल, सी नो एवल, टॉक नो एवल, डू नो एवल, थिंक नो एवल, ईट नो एवल, रीड नो एवल, इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंस्पायर, ये जीवन है एक प्रेरणादायक होना चाहिए, इंस्पायर लाइफ। पहले हम खुद अनुभव करें कि सचमुच मेरा जीवन मेरे लिए ही प्रेरणादायक बना है, दूसरों के लिए छोड़ देने का है। जो कल की हमारी लाइफ थी, क्या वो कल की लाइफ आज के लिए मुझे कुछ प्रेरणा दे रही है, या कल बीती हुई उन बातों को, जिन बातों से हमारी स्थिति गिर गई थी उन्हीं को भी पकड़ के रखा हुआ है। कुछ ना कुछ सारे दिन में तो अच्छा पुरुषार्थ क्या ही होता है, उनको चिंतन करना है, उनसे अपने जीवन से भी हमको अपने आप इंस्पायर होना है, प्रेरणा लेनी है। तो इंस्पायर लाइफ होनी चाहिए, प्रेरणादायक जीवन। नेक्स्ट है जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हमको पुरुषार्थ करना है तो रास्ता कहीं ना कहीं निकल ही आता है। अगर जीवन में चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। इच्छा तो होती है लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए खुद कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। तो जो अपनी चाहना है उनका दमन नहीं करना है, उनको समझना है। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसको पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती है, जिसको चाहना नहीं है। हर ब्राह्मण को आगे बढ़ने की इच्छा है, चाहना है, लेकिन उस चाहना तक, उस चाहना को पूर्ण करने के लिए या उसका अनुसरण करने के लिए कुछ तो हमको त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो उस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। जो स्कूलों में हम पढ़ते थे जहाँ चाह वहाँ राह, उसको भी प्रैक्टिकल में स्कूलों में भी हम कितना मेहनत करते थे, कितना संघ का त्याग या खेल कूद का त्याग करते थे। तो अगर हमको चाह है तो राह अपने आप ही निकल पाएगी, फिर हम बहानेबाजी नहीं करेंगे कि इनके कारण हमारा पुरुषार्थ को रुक रहा है, ये नहीं होते तो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ जाता है, या हमारा चिंतन नहीं चलता है, या हमारी बुद्धि ही ऐसी है। ये सारी बातें जो हैं हमारी चाहना को बांध के रखती हैं। तो उनसे बाहर निकलना है और बाहर निकलने के रास्ते अपने आप को तलाशने हैं। नेक्स्ट है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर हम हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, नज़र रखेंगे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, बाबा तो कर्म के आगे भी संकल्प की बात करते हैं, जो संकल्प हम करेंगे हमको देखकर दूसरे करेंगे। तो जांच रखनी है सारे दिन में हमारे से कोई ऐसा वैसा कर्म ना हो जो दूसरे का पुरुषार्थ भी ठंडा पड़ जाए, दूसरे भी ये सोचने लगे ये भी ऐसा करते हैं। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ, प्रेरणादायी, सुखदायी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, दूसरों को उमंग उत्साह देने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, दूसरों की बाधाओं को दूर करने वाले, ऐसे हमारे कर्म हों। तो ये भी हमको याद रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देकर दूसरे करेंगे। नेक्स्ट है, हमेशा प्रेम की गंगा बनकर बहते रहना है। हर एक मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? प्यार। हमारा जीवन अगर रूखा सूखा है तो सब हमारे से दूरी बनाकर रखेंगे। आज हम अपने अगर यज्ञ की दादियों को देखें, दीदियों को देखें, सेंटरों में भाई बहने जो आते हैं, कैसे आते हैं? सबसे पहला कौन सा शस्त्र है जिस शस्त्र से वो घायल हो जाते हैं? प्रेम का शस्त्र है वो प्यार से एक थोड़ी सी टोली खिलाई होती है और उस टोली के बदौलत ही पूरा जीवन बीत जाता है। जैसे हमारे एक भाई थे, सेवा में थे, अभी आते जाते रहते हैं, तो बोले जिसने अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर एक बार तोसा खा लिया तो वो गया, अभी उसको उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि भगवान उसको सारा कुछ दे देता है। इस टोले में भी अपनी इतना प्यार स्नेह भरा होता है। तो हम स्नेह के सागर की संतान हैं, तो हम जिसको भी व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, स्नेह की गंगा हमेशा हमको बहाते रहना है, ताकि उस स्नेह में दूसरों के दुख दर्द समाप्त हो जाएं। सेंटर में भी अगर भाई बहने आते हैं अपनी अनेक प्रकार की परेशानियों को, किस लिए आते हैं? दूर करने के लिए। बाबा की मुरली भी क्या है? स्नेह की गंगा है, वो एक स्नेह का सागर है। सुनते सुनते कैसे हम संसार की सारी बातों को भूल जाते हैं, सुनते सुनते कैसे उसके प्यार में खो जाते हैं, सुनते सुनते कई बार कैसे प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा कैसे बांधेलियों की महिमा करते हैं कि भगवान के महावाक्य को सुनते सुनते अनेक प्रकार के बंधनों को खलास करने की युक्तियां निकल आती हैं। तो स्नेह एक ऐसा चुंबक है, स्नेह एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे सारे बंधनों को काट देता है। तो हमेशा हमें स्नेह की गंगा बहाते रहना है। नेक्स्ट है, दो बाबा जो महामंत्र देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। ये हमारे जीवन का सार है, ये हमारे ब्राह्मण जगत का सार है। बाबा मुरली सुनाते सुनाते बीच में एक मिनट में क्या कहते हैं कि अभी मन मना भव मध्याजी भव, मन को मुझ में लगाओ। अगर कहीं भी हमारा चिंतन नहीं चल रहा है तो अगर ये दो शब्द भी याद रखेंगे कि मन मना भव, मन को मुझ में लगा दो, मन में शक्तियां भरो, एनर्जी भरो, ऊर्जा भरो, उससे संबंध जोड़ो, तो हमारा मन मनावा होने से क्या होगा? सार का अनुभव करेगा, बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएगा, विस्तार से मुक्त हो जाएंगे। और मध्य जीव होने से क्या होगा? उमंग उत्साह आएगा, खुशी आएगी, वो संस्कारों का सृजन हमारे में होने लगेगा। तो दो शब्द, ये दो मंत्र याद रखने हैं, मन मनावा और मध्याजीव। नेक्स्ट है, जो बाबा के अंतिम महावाक्य थे, कौन से? हाँ, इसमें दो बातें आ गई, एक तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अच्छा बच्चे लास्ट में है ना, तो हमको भी हमेशा ही सोचना है कि बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये हमारे पुरुषार्थ का सार है, ब्राह्मण जगत का ये सार है, तो उस सार को हमको भूल नहीं जाना है। नेक्स्ट है, इसी के साथ जुड़ा हुआ, नष्ट हो वह स्मृति लब्धा। उसके आगे नेक्स्ट है, हमेशा हमको आशावादी सोच, आशावादी या सकारात्मक सोच बनाकर रखनी है। इस यात्रा में अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। संडे नहीं, जो बाबा की मुरली परसों चली, बाबा ने क्या कहा? दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण करो। फिर बीच में बाद में क्या, माया भी सुन रही, यहाँ से जाएंगे तो क्रोध भी आएगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी आएंगी। यहाँ से जब युद्ध के मैदान में, बाबा कहते ना, तुम युद्ध के मैदान में हो, वी आर ऑल एट द बार, है ना, युद्ध के मैदान में हो, तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी आएंगी, लेकिन उसमें हमको डिसाल्टेड नहीं होना है। बीमारी अंदर है, बाहर निकल गई, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। अगर क्रोध आ भी गया तो उसको क्या कर सकते हैं? छोड़ दो उसको, जो चीज़ अंदर है निकल तो आई कम से कम बाहर, नहीं तो उसको दबा के थोड़ा रखना है। तो जो चीज़ें हमारे जीवन से हो भी जाती हैं तो उससे हमको डिसहार्टेड नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है और उनसे सीख के आगे बढ़ना है। अगर हम महसूस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, जो बाबा ने कहा रिवाइज और रियलाइज, अगर रियलाइज़ करेंगे तो उससे हम अपने आप मुक्ति मिल जाएगी उसको, उस चीज़ से। तो डिसहार्टेड नहीं होना उन चीज़ों से, हमको हमेशा हमको आशावादी सकारात्मक सोच बना कर रखनी है, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। नेक्स्ट है रिगार्ड दो, रिगार्ड लो, सबको रिगार्ड देना है, क्योंकि सब किसके प्यासे हैं, सम्मान के हैं। अगर छोटा सा बच्चा भी है उसको अगर प्यार से बात नहीं करेंगे, रिगार्ड नहीं देंगे तो क्या कहता है, मैं काम नहीं करूँगा आपका, कुछ भी करते रहो। रिगार्ड देंगे तो वो पहाड़ को ही उठा के फेंक देगा, हाँ जी, पानी भी नहीं पिलाएगा वो। तो रिगार्ड के सभी, रिगार्ड की सबको रिगार्ड की जरूरत है, सम्मान दो, सम्मान लो, हाँ जी। कोई कोई बच्चे पैसे से भी मान जाते हैं, हाँ, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो पहले टाइम में क्या होता है, पहले हमको पता है बचपन में सबको अनुभव होगा, माँ बाप जो संस्कार कैसे बच्चों को देते थे, सम्मान के संस्कार देते थे, है ना। और अभी पैसे वाले संस्कार हैं, है ना, पैसा दो तो काम लो, ऐसे बच्चों के संस्कार हो गए हैं, प्रलोभन दिया जाता है। तो हमारे जो संस्कार हैं, सम्मान देने के संस्कार हैं, सबको सम्मान देना है और सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है सुख दो और सुख लो। हमारी भावना सबको सुख देने की होनी चाहिए और उससे पहले स्वयं को भी सुख देना है, अर्थात अगर कोई हमको दुख देने की कोशिश करे तो हमको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। सामने वाले ने अगर दे भी दिया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने का, क्योंकि वो हमारे पास उसके दुख को ग्रहण करने के लिए हमारे पास मार्जिन नहीं है, तो हम अपने बुद्धि में क्यों रखें। बुद्धि में हम तब रखते हैं जब हमारे पास वो सुख की संपदा नहीं है, हम सुख ही सूखे हैं। तो हम अगर सुख से भरपूर हैं, स्वयं को ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख से भरपूर किया है, तो हम स्वयं को भी सुख अनुभव कर सकते हैं, सुखी अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। तो क्या है, सुख देना है और सुख लेना है। कितनी बातें होगी, 18 होगी, नहीं, जो एन एन वाली दो इकट्ठी थी। लास्ट है तपस्या, इस जीवन का सार है तपस्या। तो तपस्वी, तपस्या ही इस ब्राह्मण जीवन का सार है। तो तपस्या केवल बैठ के नहीं है, लेकिन कर्म भी एक साधना है, कर्म भी एक तपस्या है, बोल भी साधना है, देखना भी साधना है, दृष्टि भी साधना है, समन संपर्क में व्यवहार में आना भी साधना है। तो तपस्या को किस रूप में अपने जीवन में ला सकते हैं, ये आप सभी चिंतन कर सकते हैं। तो ये 18 बातें थी, कौन कौन सी, सबसे पहले अगर इस जगत का सार, हम हैं सार, तो उस सार का अनुभव करने के लिए इन 18 बातों पर ध्यान रखेंगे तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध बन जाएंगे। और सबसे पहली बात कौन सी थी, एक बाप ही हमारा संसार है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप की तरह हमारा जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। तीसरी बात, शिकायत नहीं करनी, सबका शुक्रिया करना है। चौथी बात, डू गुड हैव गुड, कर वाला तो हो वाला। पांचवी बात, ऑनेस्ट रहना है। छठी बात, फ्रीडम, नेक्स्ट जियो और जीने दो। नेक्स्ट, हियर नोएबल, सी नोएबल, टॉक नोएबल, डू नोएबल, थिंक नोएबल, ईट नोएबल, रीड नोएबल। और नेक्स्ट, इंस्पायर। नेक्स्ट, जहाँ चाह बहारा। नेक्स्ट, जो कर्म मैं करूँगा मुरी देख कर दूसरे करेंगे। नेक्स्ट, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नेक्स्ट, मन मनावा मध्य जीव। नेक्स्ट, निराकारी निरंकारी निर्विकारी और नष्ट मोह स्मृति लब्धा। नेक्स्ट, आशावादी सकारात्मक सोच बनाकर रखनी है। नेक्स्ट, रिगार्ड देना, रिगार्ड देना। नेक्स्ट, सुख दो, सुख लो और सुखदेव बनकर रहो। नेक्स्ट, जीवन में तपस्या कभी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ मैं, खुदाई नूर हूँ चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ मैं, खुदाई नूर हूँ चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।